ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दामोदर अष्टकम से, आज ये सातवां श्लोक है। तो यह कार्तिक का महीना बड़ा ही शुभ महीना है। तो कार्तिक महीने में भगवान दामोदर की आराधना की जाती है। तो मैं कल वैष्णव महाराज के साथ में था तो पता चला कि यही श्लोक बोलना है, कुबेर आत्मजौ। तो महाराज बोले कि आपको पढ़ने की जरूरत क्या है, अभी आपने जो बम्बे में क्लास दिया वही क्लास दे देना, यही बोले थे ना। तो इनके आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। कुबेरा आत्मजौ बद्धा मुताय एवा यदत्वा त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वका मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदर इह। तो ऐसा करेंगे, आप लोग डेली पढ़ते ही हो, समय कम है तो एक प्रभु जी और एक माता जी इसका ये कर लेंगे, और मैं भी एक ही बार बोलूंगा। कुबेरात्मा जौ बद्धम उत्वय दात्वाम त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कीर्तौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। जल्दीबाजी के लिए दो लाइन भी कर सकते हैं, चलेगा। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, लड़ाई के मैदान में नियम समझना है पहले, बिना समझे लड़ाई में कूद जाओ मारे जाओगे। तो मैंने कहा कि एक प्रभु जी और एक माता जी, यही कहा था मैंने। तो प्रभु जी का हो गया, बारी है माता जी लोगों का। समंतक दरवाजा पर क्यों है, तो आ जाओ अंदर। ना ना, हो गया हो गया, एक ही माता जी का लाइसेंस था। अच्छा अच्छा, सॉरी।
प्रेम
माता जी लोग है ना, बेचारी अपने दूसरे को खिलाती है, बाद में खाती है, बांट कर खाती है, हम लोग तो अकेले खा लेते हैं, बांट कर खाते हैं। अनुवाद, हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुबर और मणिग्रीव, एक पंखा चालू कर दो भाई, कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरी एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार से मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्जिनमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप लोग तो इस लीला को कई एक बार सुने होंगे। यहाँ पर मुख्य करके जो बात बताई गई है, जो सत्यव्रत मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान जो दामोदर हैं वे स्वयं बंधे हुए थे, और वे कुबेर के दो पुत्र जिनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव, उन लोगों को नारद जी के श्राप से मुक्त किए और उन्हें प्रेमा भक्ति प्रदान किए। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि हमारी भी वैसे ही कामना है कि हमें भी वही प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे मुक्ति या अन्य कोई चीज संसार में नहीं चाहिए, यानी मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए। तो हम लोग जानते हैं, कहा गया है मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। भक्त लोग बड़े चाक होते हैं, इसलिए टेम्पररी चीज नहीं मांगते हैं, परमानेंट चीज मांगते हैं। तो मुक्ति और भुक्ति नहीं मांगते हैं, शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति। तो भगवान दामोदर की लीला को आप लोग सुने ही होंगे कि किस प्रकार से भगवान ने एक बार चोरी किया अपने ही घर में। कोई कह सकता है अपने घर में चोरी किया गया, चोरी चोरी थोड़े होता है, लेकिन सब जगह कुछ नियम कानून होता है, नियम कानून को पालन करना चाहिए। पहले घरों में घर के एक मालिक होते थे, तो कुछ भी काम करना होता तो मालिक से पूछ कर करना चाहिए। हालांकि कृष्ण मांगते तो उन्हें मक्खन की कमी थोड़ी थी, यशोदा मैया को बहुत मक्खन देती, लेकिन वे चोरी कर करके और कुछ और कर रहे थे। तो जो चोर करता है उसे, जो चोरी करता है उसे जेल में भेजा जाता है। तो भगवान एक गलती किए थे कि मटकी तोड़ दिए थे, तो यशोदा मैया डांटी फटकारी डंडा दिखाई मारी, लेकिन भगवान चोरी किए थे। तो आजकल के चोर लोगों को तो जीप में बैठा कर ले जाते हैं लोग ना, बड़े सम्मान के साथ में। पहले के चोर को लोग हथकड़ी लगा कर ले जाते थे। देखें आप में कितने लोग हथकड़ी देखे हैं, कोई लगवाया है अभी तक से? ठीक है, अच्छे आप साधु लोग सब। तो पहले चोरों को हथकड़ी लगाई जाती थी, बांधा जाता था हाथ को। तो मैया भी कृष्ण के हाथ को हथकड़ी लगाना चाहती थी। मैया जब भगवान का सेवा करने आई मक्खन निकालने के लिए, तो कमर कस कर मक्खन निकाल रही थी। वहां पर 9वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया, 9वां या 10वां अध्याय, 9वां है ना, कि मैया अपने करधनी में सिल्क का रस्सी बांधी थी। ये प्रमाणित करता है कि भगवान का जब सेवा करना होता है तो कमर कस कर सेवा करना चाहिए। कमर ढीला रहेगा तो स्लिप डिस्क हो जाएगा। तो भगवान का सेवा कमर कस कर करना चाहिए, भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। इतना सेवा में लगे रहना चाहिए कि शरीर के अंग प्रत्यंग थक जाए और शाम को सोने के लिए फिर स्लीपिंग पिल की जरूरत न पड़े, इतना सेवा करना चाहिए। जो भक्त बनना चाहता है वो कम से कम 8 घंटा सेवा करना चाहिए, 8 घंटा सेवा करना चाहिए। यही नल कुबर और मणिग्रीव भगवान से कामना किए हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने हाथों से और इंद्रियों से आपकी सेवा में इसको लगाएं। तो यशोदा मैया भगवान की सेवा कर रही थी कमर कस करके, और उस रस्सी से बांधना चाहिए, और जब बांध रही थी तो रस्सी 2 उंगली छोटा हो जा रहा था, आप लोग जानते हैं उस बात को। तो मैया ने बांध तो दिया कृष्ण को, लेकिन कृष्ण को बांधने के बाद मैया ने उखल से बांधा कृष्ण को, भगवान के उदर को बांधा और बाद में उखल से बांधा। मैया कहीं भी बांध सकती थी, खाट था, बिछावन था, खाट के पैर से बांध सकती थी, नल कुबर वहां पर पेड़ के रूप में थे, पेड़ में बांध सकती थी, अब उखल में ही क्यों बांधा? तो एक आचार्य कहते हैं खल का मतलब होता है बदमाश, और उखल का मतलब बदमाश का बाप, महाबदमाश है। तो दुख से दुख जात है, लोहा लोहा को काटता है। तो कृष्ण गलती किए थे, चोरी किए थे, चोरी करना एक खल का काम है। तो मैया ने सोचा कि हमारा लाला तो बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, ये ऐसा गलत काम नहीं करता है, लेकिन संग से रंग चढ़ता है, संग से गुण होता है, संग से गुण जात। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि हम लोगों को हमेशा साधुओं का संग करना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र कह, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो यह लाला एक खल का संग किया है, उखल का, तो इसलिए उसका प्रभाव इस पर पड़ गया है। एक बात तो यह था, दूसरा बात यह था कि चोर जो चोरी करता है वो तो दंड का भागी होता ही है, लेकिन चोरी करने में जो सहायक होता है वो अभी दंड का भागी होता है। तो उखल सहायता किया था कृष्ण को चोरी करने में, इसलिए मैया ने कृष्ण को उखल से बांधा। और शाम का समय मैया बांध करके, देखिए ये लीला शुरू हुई थी सुबह में शुरू हुई थी लीला, और होते होते शाम हो चुका था। जब शाम का समय होता है, वो भी आजकल कार्तिक महीने में, आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है तो इधर गर्मी है, पंखा चालू करना, पहले जमाने में ठंडा है, ठंडा का समय होता था, 5 बजे सूर्यास्त हो जाएगा। तो शाम का समय हो गया था, और हम सब लोगों को याद होगा कि कैसे शाम के समय हम लोग स्कूल से आते थे, किताब उताब फेंक करके फुटबॉल खेलने चले जाते थे। शाम का समय खेलने का समय होता है, सब ग्वाल बाल लोग आए, चलो चलो कृष्ण, चलो खेलने चलते हैं, खेलने चलते हैं। तो कृष्ण कहे खेलने कहाँ जाए, दिखता नहीं तो मेरा परिस्थिति क्या है। तो कृष्ण कहे कि ठीक है चलो, वैसे ही चलते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण वहां पर आंगन में आए खेलने के लिए। लेकिन ये जो महानुभाव थे जिनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव, थोड़ा इनका कथा सुनेंगे। इस कथा को पहले वालों को यहीं पर थोड़ा कोमा देंगे और इसके बाद में जोड़ेंगे। तो नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों कुबेर के बेटे थे। एक भक्त कहते हैं कुबेर का मतलब होता है कोढ़, जिसको कोढ़ हो, कुबर कोढ़ वाला। और ये जो दोनों थे नल कुबर और मणिग्रीव, ये देखने में बड़े अभद्र थे। नल देखे, नल झुका होता है, तो ये हंच बैक थे नल कुबर, और मणिग्रीव एक के मणि में यहां पर बड़ा घाव जैसा होता है ना, बड़ा लटका हुआ था, तो मणिग्रीव था। खैर मजाक में भक्त कहे, लेकिन थे ये दोनों कुबेर के पुत्र, तो अच्छे बाप के बिगड़े संतान थे लोग। इन लोगों को पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगता था। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो बाप अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है वो अपने बच्चों का शत्रु होता है। सब बाप माँ का धर्म है बच्चों को पढ़ाना। मैं एक बार कहीं क्लास दे रहा था तो किसी ने प्रश्न किया कि नंद बाबा ने कृष्ण को क्यों नहीं पढ़ाया, तो मैंने कहा तुमसे किसने कह दिया वो नहीं पढ़ाए थे। कृष्ण जितना पढ़े थे उतना तुम नहीं जानते हो, समझते हो कि वो नोटबुक और पेन से और स्कूल में जाकर वही पढ़ाई होता है। आजकल उसी को लोग पढ़ाई समझते हैं, लेकिन नंद बाबा वैश्य थे। कृषि गोरक्षण वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव, तो कृष्ण सब कुछ जानते थे गौओं के विषय में, यहां तक कि गौओं का नाम जानते थे, पुकारना होता था जिसको उसको पुकारते थे। गौ एक काऊ विज्ञान, आजकल तो यूनिवर्सिटी खुल रही है काऊ यूनिवर्सिटी, वहां लीला पुरुषोत्तम इधर है नहीं, उनका प्लानिंग है रांची में, हम लोग प्रयास कर रहे हैं 1200 एकड़ जमीन लेकर के काऊ यूनिवर्सिटी खोलने का। कृषि यूनिवर्सिटी तो सुने हैं ना, कृषि विज्ञान का यूनिवर्सिटी वो तो है, फार्मिंग का है, अब काऊ का भी स्कैन शुरू करेगा तो काऊ यूनिवर्सिटी। तो कृष्ण सब कुछ जानते थे गाय के विषय में, सब कुछ पढ़े हुए थे। तो कुबेर भी अपने पुत्रों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन ये थे बदमाश, इन लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो बेचारे बड़े थक गए और थक करके एक दिन भगवान शिव के पास गए, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, लेकिन वो पड़ोसी बड़े मित्र थे, अलकापुरी और कैलाश नजदीक है, लेकिन मित्रता थी। यक्ष राज कुबेर जो देवताओं के खजांची हैं, वे भगवान शिव के भक्त भी थे और मित्र भी थे। तो एक दिन गए और भगवान शिव ट्यूशन पढ़ाते थे, वहां बहुत लोग पढ़ने आते थे, साधु महात्मा ऋषि लोग आते थे। आप लोग छठे स्कंद में कथा सुने होंगे महाराज चित्रकेतु का, कि किस प्रकार से जब महाराज चित्रकेतु जा रहे थे देखे कि भगवान शिव अपने जंघे पर पार्वती जी को बैठा कर कथा सुना रहे हैं और सब ऋषि लोग सुन रहे हैं। तो वहां बहुत लोग सुनने आए थे, नारद इत्यादि बहुत लोग सुन रहे थे, बहुत लोग सुनते थे। तो कुबेर जी रिक्वेस्ट किए भगवान शिव से कि हमारे इन नालायक बच्चों को भी थोड़ा पढ़ा दीजिए। तो भगवान शिव के प्रति थोड़ा उनको सम्मान था, तो वे पढ़ने आते थे, लेकिन पढ़ने में भोदा नंबर एक थे। भोदा समझते हैं, भोदा मतलब जो तेज ना हो, डम। देखो ये पहचान है, जो कुशाग्र बुद्धि के लड़के होते हैं वो क्लास में आगे बढ़ते हैं, और जो भोदू होते हैं पीछे रहते हैं कि कब मैं जाऊं वहां से घूमने के लिए, वो आगे नहीं आएंगे, बुलाते रहो तो अभी नहीं आएंगे। वैसे ही प्रवचन में भी जो प्रसाद वाले होते हैं पीछे खड़े रहते हैं, पीछे बैठेंगे, जल्दी भागना है ना। तो जो इंटेलिजेंट होते हैं वे आगे बैठते हैं। अब इन लोगों को तो पढ़ने में मन लगता नहीं था, तो ये लोग पीछे बैठते थे। अब भगवान शिव आंख बंद करके हरि कथा सुना रहे थे। किसका बच्चा रो रहा है, उसको बंद करा भाई। तो भगवान शिव पढ़ा रहे थे, लेकिन ये लोग वहां से घिसक पड़े दोनों भाई, और बहुत प्लानिंग कर करके गए थे। आजकल जैसे इस्कान में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चल रहा है, महाराज किए ना आपने जीबीसी कॉलेज में, तो वो लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किए थे किस समय वहां से निकलना है, और अप्सराओं को बुला लिए थे, और मंदाकिनी किस पवित्र जल में वे जल क्रीड़ा करने लगे। नंग धड़ंग थे, कोई वस्त्र धारण नहीं किए थे, और शराब पी करके मदमत थे, ऐसा शराब नहीं लेकिन शराब पिए थे। तो एक तो उन लोगों को मद था ही धन का मद, माता कुंती कहते हैं चार प्रकार का मद होता है, जन्म ईश्वर्य श्रुत श्रीभि एधमान अधपवान। ये चार प्रकार के मद होते हैं और ये व्यक्ति को पागल कर देते हैं। तो एक तो ऐसे ही कुबेर के संतान थे तो उनमें मद था ही, तो वो कुबेर के संतान थे और ऊपर से शराब पी लिए थे। एक तो बंदर और उसको शराब पिला दो, ये सत्य घटना है। जब मैं यहाँ का प्रेसिडेंट था तो अभी जहाँ विष्णु महाराज रहते हैं वो मेरा ऑफिस था ऊपर यहाँ पर, तो एक भक्त था हमारा टेम्पल कमांडर, क्या था, ललित लघु केशव। तो एक दिन आया, कहा कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा फनी लड़का है कि नहीं आजकल लघु केशव है, कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाएगा? तो पौच वाला होता है ना शराब, वो ले करके आया और यहाँ पैरापेट है वहीं पर एक ग्लास में रखा और कहा आप देखते रहिए। एक बंदर आया और शराब पी लिया और देखिए वो क्या कमाल कर रहा था। मैं कहा लहू के साथ तेरा भाई है क्या? लहू के साथ अच्छा भक्त था बेचारा, पता नहीं क्या करता है, टेम्पल कमांडर था उस समय। एनीवे, तो मैं कह रहा था कि एक तो मद शराब सॉरी एक तो धन मत था और ऊपर से शराब पी लिए थे। अब नारद जी कथा सुन करके जा रहे थे, वो कहीं से जा सकते थे, लेकिन श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर यदृक्षया, उन लोगों पर कृपा करने के लिए नारद जी वहीं से गए जहां पर ये लोग विहार कर रहे थे उन अप्सराओं के साथ। जब अप्सराओं ने देखा नारद जी को आते हुए, नारद जी चुपचाप नहीं जाते हैं, वो भी अपना कीर्तन करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, तो कृष्ण नाम गाते हुए नारद जी जाते हैं। तो अप्सराओं ने जब देखा नारद जी को तो श्राप से भयभीत हो गई कि नारद जी अब तो श्राप देंगे, और फटाफट आ करके वे लोग वस्त्र धारण कर ली। वैसे भी स्त्रियों में लज्जा की प्रधानता होती है, आजकल वो सब खत्म हो चुका है, पहले बहुत लज्जा था स्त्रियों में। तो आ करके वे स्त्रियां तुरंत, और ये बदमाश लोग नंग धड़ंग थे, बल्कि कह रहे थे बाबा से काहे डरती हो तुम लोग ऐसे ही हो, काहे कपड़ा पहनती हो। जब नारद जी आए और देखे इन लोगों के धृष्टता को, तो नारद जी बड़े, उनको गुस्सा तो नहीं आया, दया आया, उन्हें दया आया कि हाय हाय ये देवता के पुत्र हैं और ऐसे नंग धड़ंग। अरे बेचारा गरीब है, नंगा रहता है तो कोई बात नहीं, अब इतना धनी आदमी का बच्चा नंगा हो? आजकल लोग फैशन बना दिए हैं, पहले कोई फटा कपड़ा पहनता था तो लोग कहते थे कि गरीब घर का आदमी है, आजकल मैं सुना कि जो फटा कपड़ा है वो जींस उसका ज्यादा दाम है। ये लगता है कलयुग तब से ही शुरू हो गया था। तो ये नंग धड़ंग घूम रहे थे वहां पर थे, तो नारद जी को दया आ गई, तो नारद जी उन पर कृपा कर करके कहे कि हालांकि वो देखे कि स्त्रियां कह रही है कि तुम लोग भी कपड़ा पहन लो, बाबा हैं नारद जी आ रहे हैं, उचित नहीं है, श्राप दे सकते हैं, कह रहे कहा को श्राप देंगे। तो नारद जी उन लोगों को श्राप दिए कि लगता है तुम लोग नंगा ही रहना चाहते हो, तो जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ। जब श्राप हुआ तो तुरंत आकर के नारद जी के चरणों पर वे गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। तब नारद जी उन लोगों पर अनुग्रह किए, श्राप और अनुग्रह। जब नारद जी श्राप दिए, लेकिन श्राप देते हुए यह भी कह दिए कि तुम लोगों की स्मृति बनी रहेगी, तुम लोग वृक्ष बन जाओगे लेकिन तुम लोगों की स्मृति बनी रहेगी। अब समझ लीजिए कि कितना खतरनाक श्राप था। मान लो कोई व्यक्ति मनुष्य है और वो सुअर का देह धारण कर लिया, दूसरे जन्म में सुअर बन गया, और उसको स्मृति बना रहे कि मैं मनुष्य था। तो खा पी पाएगा वो? सुअर का भोजन मल है, गरम गरम मल आएगा तो खाएगा? स्मृति बनी रहे। तो ये पेड़ थे लेकिन कहे तुम्हारा स्मृति बना रहे। और जब नारद जी के चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लगे तो उन पर अनुग्रह किए। नारद जी वास्तव में उन लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही गए थे, उन पर अनुग्रह किए, और अनुग्रह किए कि जब भगवान का चरण स्पर्श होगा तब तुम लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से नारद जी उन लोगों को श्राप दे करके चले गए। अब इधर ये दोनों कुबेर के जो बेटे थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये लोग उस समय नंद बाबा के पिताजी प्रजन्य बाबा गोकुल का स्थापना कर रहे थे, और उसी समय उन्होंने इन दो वृक्षों को लगाया था। ये दोनों को एक साथ लगा दिए थे इसलिए ये दोनों जुड़वा वृक्ष थे। इनका नाम था जमलार्जुन। अर्जुन के वृक्ष थे लेकिन दोनों एक ही साथ में थे इसलिए इन्हें जमलार्जुन कहा गया। अब जब ये वृक्ष बड़े हो रहे थे, हालांकि वो लगे हुए थे कहीं पर थे, तो सांडुल्य मुनि जो उनके गुरु थे, जैसे गर्गाचार्य जदवंश के गुरु थे, वैसे ही नंद बाबा के यहाँ वैश्यों के गुरु जो थे वे सांडुल्य मुनि थे। तो सांडुल्य मुनि आए और वे जब देखे इन दो वृक्षों को, बड़े सुंदर देखने में लग रहे थे, अर्जुन वृक्ष थे, तो उन्होंने कहा प्रजन्य बाबा को कि आप इन लोगों को, अब ये देवता तुल्य हैं, ये देवता हैं, इनको अपने आंगन में लगाएं। प्रजन्य बाबा के जो पिताजी थे महाराज देवमीढ़, उनकी तीन पत्नियां थी, एक छत्राणी थी जिनके पुत्र हुए सुरसेन, और एक वैश्य थी उनके पुत्र हुए प्रजन्य बाबा, और जो शूद्र पत्नी थी उससे उत्तम पुत्र हुए हैं उग्रसेन देवक इत्यादि। तो इस प्रकार से सुरसेन के 15 संतान हुए, वसुदेव इत्यादि 10 भाई, और प्रथा इत्यादि 5 बहन, और वैसे ही देवक और सुरसेन के पुत्र और पुत्रियां हुई। सुरसेन के थे कंस, सॉरी उग्रसेन के कंस, और देवक की देवकी थी, और प्रजन्य बाबा के हुए उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन। तो इस प्रकार से ये 5 हुए। तो प्रजन्य बाबा उन दोनों वृक्षों को लगाए थे। जब कृष्ण बड़े जब अपने घर में थे, हाँ ये वृक्ष लोग क्या करते थे, इन लोगों की स्मृति बनी हुई थी कि ये लोग कौन थे, कुबेर के बेटे थे, कुबेर के बेटे थे ना, हुंकारी तो भर कम से कम आया ना। तो कुबेर को बड़ी चिंता रहती थी और कुबेर अपने दूतों को भेजते थे कि हमारे बेटे ठीक तो हैं ना, और ब्रजवासी लोग आ आ करके और वो वृक्ष के पास ऐसे ही कुछ बात कहते और उनकी कामना पूरी हो जाती। किसी के लड़की का विवाह नहीं हुआ तो कामना कर लिया, क्योंकि देखने में बड़े सुंदर वृक्ष थे, तो स्त्रियों में तो ऐसे भी ज्यादा विश्वास कुछ होता है पुरुषों से। तो वे आकर के प्रार्थना करती थी और जिस चीज की प्रार्थना करती थी वो कामना पूरी होती। किसी को धन चाहिए धन मिल जाता, जिसको जो चाहिए, ये नल कुबेर और मणिग्रीव अपने सेवकों को बोलते थे कि घर में ला करके यह व्यवस्था कर दो, वो मिल जाता था। अब चमत्कार को नमस्कार, सब स्त्रियां काचा धागा लेकर के चारों तरफ उसको पूजा करने लगी, अब वो पूजित हो गए नलकुबर और मणिग्रीव। वहीं पर नंद बाबा बहुत सुंदर चबूतरा बनाए थे और नंद बाबा गांव के मुखिया थे, महाराजा थे, राजा थे। तो जो भी पंचायती वगैरह होता था तो ये नलकुबर और मणिग्रीव ये जमल वृक्ष के नीचे ही ये पूजा हुआ करता था, या सॉरी सभा हुआ करता था। और जो भी इच्छा थी सब सभा फर्स्ट क्लास था। यहां तक कि बछड़े को वहां बांधा जाता था, कृष्ण बलराम सब मित्र लोग वहां आकर खेलते थे। हाँ, जब कृष्ण बिल्कुल छोटे थे तो प्रथम बार जब दर्शन किए हैं तो एक आचार्य इसका वर्णन किए हैं कि कृष्ण कैसे दर्शन करने आए हैं नलकुबर और मणिग्रीव पर। क्यों कृष्ण दर्शन करने आए? क्योंकि ये नलकुबर और मणिग्रीव ब्रजवासियों का सेवा किए थे। जो भक्तों का सेवा करता है भगवान भी उसे मिलना चाहते हैं, भगवान भी उसका दर्शन करना चाहते हैं। जो भगवान का सेवा करता है तो ठीक ही है, लेकिन जो भक्तों का सेवा करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे आप प्रसादात भगवत प्रसाद हो, जब भक्त कृपा होती है तभी भगवान कृपा होती है। तो ब्रजवासियों का कृपा इन लोगों पर भरपूर हुआ था, क्योंकि ब्रजवासियों का ये लोग सेवा करते थे। जो भी ब्रजवासियों की इच्छा थी वह पूरा करते थे। तो भगवान आए इन लोगों का दर्शन करने के लिए। भगवान उस समय बकैया चल रहे थे, बकैया चलने का समझते हैं ना, घुटने पर चल रहे थे और अपने हाथ में मक्खन का लोंद लेकर के घुटने पर चलते हुए आए। पहले जमाने में मंदिरों में चाहे घरों में चौकट हुआ करता था। चौकट समझते हैं ना, बेदी अभी भी यहाँ पर है कि नहीं, निकाल दिए कि है, लगवाए थे उस समय। ठीक है, चौधरी बोले थे लगवाए थे हम लोग, मार्बल का है नहीं, निकाल दिए। पहले चौकट हुआ करता था, कहते थे स्त्रियों के लिए कि जब शादी विवाह हो गया तो वो चौकट नहीं लांगती हैं, एक बार लांगने के बाद अब मृत्यु के बाद ही घर को त्यागेगी। तो चौकट बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। तो नंद बाबा के यहाँ चौकट था, लेकिन थोड़ा बड़ा चौकट था, मार्बल का होगा, बड़ा होगा। तो कृष्ण छोटे बालक थे, बगैया चल रहे थे, चौकट पार नहीं कर पा रहे थे। तो वे मानो वहां पर वीरासन पर बैठ गए भगवान, चौकट पर हाथ पकड़ करके और एक हाथ में मक्खन लिए हुए हैं और उन वृक्षों को तरफ दिखा रहे हैं, उन वृक्षों को अर्पित कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं कि तुम लोग इतना अच्छा तरह से ब्रजवासियों का सेवा करते हो, अब मैं तुम लोगों का सेवा करना चाहता हूँ। तो इस भाव से भगवान वहां पर मक्खन खिलाना चाहते थे उन। तो शुरू से ही प्रथम कार्य भगवान किए, जब दर्शन किए तो मक्खन लेकर के आए। कहा जाता है साधु महात्माओं से मिलने जाइए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो भगवान खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे, मक्खन लेकर गए उन लोगों का दर्शन करने के लिए। अब कालांतर में वहां पर विभिन्न प्रकार का, जैसा कि हम बताया कि कार्य होता था। ये वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं थे, ये इम्पोर्टेंट वृक्ष थे। और क्या इनका सौभाग्य था कि कृष्ण लीला में भाग लिए। देखिए, ब्रज में कुछ भी जड़ नहीं है, ब्रज में सब कुछ चेतन है, वृक्ष हो, पत्ते हैं, सुअर हैं, कोई भी है, सब के सब चेतन है ब्रज में। सौभाग्यशाली वे लोग हैं जो ब्रज में निवास कर रहे हैं, जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज में वास कर रहे हैं, वे सौभाग्यशाली लोग हैं। हम लोग जब शुरू शुरू वृंदावन आए थे 76 की बात है, तो राधा गोविंद महाराज और हम लोग परिक्रमा कर रहे थे। तो ये चीर घाट है ना, तो वहां पर सुअर कुछ थी वहां पर, और सुअरों का बेडरूम था, समझ गए ना कहने का मतलब, वो कीचड़ वगैरह था जहां पर सुअर आराम करती है। तो वहीं पर महाराज कथा कह रहे थे और हम महाराज जी को साधु जी कहते थे उस समय। तो साधु जी कथा कह रहे थे और वे कहे कि इन लोगों का कितना सौभाग्य है, ये लोग कितने महान भक्त हैं। जो लोग इतने महान हैं, ये ब्रज का सब कुछ महान है, और जो लोग वास्तव में भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इन लोगों का चरण धूलि प्राप्त करना चाहिए। भक्त पद धूलि जार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। और भक्त लोग कूद पड़े उसी सुअरों के बेडरूम में है? तो मैं कह रहा था कि ये सौभाग्य है उन लोगों का जो ब्रज में जन्म लिए हैं, जो ब्रजवासी हैं, चाहे भले ही वृक्ष के रूप में जन्म क्यों लिए हो। तो ये वृक्ष के रूप में जन्मे थे लेकिन ये सौभाग्यशाली थे। इन लोगों को लज्जा लग रही थी जब ब्रजवासी लोगों का सेवा करते थे, इनका लज्जा, अरे मैं हमारा सेवा आप क्यों कर रहे हैं, हम आपका सेवा करेंगे, और इस प्रकार सेवा करते थे। ऐसी ही कामना होनी चाहिए, हम लोगों के पास देना बैंक होना चाहिए, लेना बैंक नहीं, सेवा देना बैंक, सेवा देना चाहिए न कि सेवा लेना चाहिए। ये नल कुबर यानी जमलार्जुन यही करते थे, भगवान बड़े प्रसन्न थे इन लोगों से। अब जो जहां कौमा लगाया था, अब आगे बढ़ाता हूं कि समय कल 15 मिनट बाकी रह गया है, ठीक चल रहा है ना महाराज? तो इस प्रकार से अब भगवान जब शाम का समय था, जब ग्वाल बाल लोग आए, सब लोग प्रयास किए, ठेल करके किसी प्रकार से लेकर के गए, पहले तो खोलने का प्रयास किए, लेकिन जब खोलने जा रहे थे रस्सी तो और टाइट हो रहा था। तो कृष्ण ने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग ये खोल रहे हो कि बांध रहे हो? कहा कि नहीं, हम तो खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहा वो खोल नहीं पाए क्योंकि यहां पर भाव विचार है। यशोदा मैया ने रस्सी बांधा था, यह वात्सल्य भाव है, तो वात्सल्य भाव में कृष्ण बांधे गए थे और सखा लोग साख्य भाव में थे, तो वात्सल्य भाव का बंधन साख्य भाव में नहीं खुल सकता है। तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम लोग खोलो मत, चलो अब हम चलते हैं ऐसे ही। अब भगवान उखल को खींचते हुए आए, भगवान निशाना लगा रहे थे कैसे मैं ड्राइविंग करूं कि इसके बीच में फंस जाए। अब ये जो नल जमलार्जुन वृक्ष था प्राय ऐसे ही ऊपर गया था, नीचे से जड़ जुड़ा था कुछ दूर तक। तो भगवान उखल को खींचते खींचते लेकर के आए और ऐसे लेकर के आए कि उसमें फंस जाए। अब भगवान पहले निकले, भगवान पहले प्रवेश किए, उन दोनों वृक्षों में भगवान पहले प्रवेश किए। भगवान उखल को साइड से भी ला सकते थे, कहीं से ला सकते, ग्वाल बाल लोग आ गए थे, भगवान ने कहा तुम लोग चलो हम आ रहे हैं, हम ही खींचेंगे, तुम लोग उसने काम चलेगा। तो ग्वाल बाल लोग आ गए, चलते भगवान आ रहे थे, भगवान पहले वो दो वृक्ष के बीच में घुसे। एक आचार्य कहते हैं कि जब भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो हम लोगों का हृदय शुद्ध हो जाता है, वही मुक्ति का समय होता है। ये तो दोनों मुक्त हो गए थे, भगवान तभी हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे जो हमारा हृदय शुद्ध होगा। श्रोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो हि अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, जब हम संत बन जाएंगे, तब भगवान वहां पर विराजमान होंगे शुद्ध हृदय में। तो नल कुबर और मणिग्रीव ब्रजवासियों का सेवा करते करते शुद्ध हो गए थे, इनका हृदय शुद्ध हो गया था, इसलिए भगवानों के हृदय प्रदेश में प्रवेश किए, और हृदय प्रवेश में प्रवेश कर करके भगवान को याद आ गया कि नारद जी ने कहा था इन लोगों को मुक्त करने के लिए, जब मेरा स्पर्श होगा तब इन लोगों की मुक्ति होगी क्षण स्पर्श से। तो भगवान भक्तों के द्वारा कहे गए बात को पूर्ण करते हैं। जैसे भागवतम में प्रहलाद महाराज कथा हम लोग जानते हैं, जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, प्रहलाद जी कहे सब जगह हमारे भगवान हैं। हिरण्यकश्यपु चैलेंज किया, क्या खम्भे में है क्या? कहाँ, खम्भे में है। भगवान कहीं से भी आ सकते थे, लेकिन भगवान उस खंभे से आए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सत्यम विधातु निजवित्त भाषितम, अपने भक्त के द्वारा कहे गए बात को सत्य करने के लिए भगवान उस खंभे से निकले। ठीक वैसे ही भगवान नारद जी के द्वारा कहे गए बात को सत्य करने के लिए, उन्हें याद आया कि नारद जी ने श्राप दिया था है, और भगवान आए और जब उखल फंस गया तो उखल को निकालना था, तो भगवान बालकवत प्राकृत शिशु का कार्य कर रहे हैं। कैसे? जब जोड़ लगाना हो तो भगवान ने क्या किया कि दो जो हाथ था वो भूमि पर रखा, उखल तो फंस गया है वृक्ष में, दो हाथ भूमि पर रखा और पैर को दो वृक्षों के इधर लगाए, जोड़ लगाने के लिए, जोड़ लगाने के लिए पैर को वृक्षों में लगाए और हाथ को यहां रख करके खींचे, और ज्यों ही खींचे भगवान दोनों वृक्ष बूम गिर पड़े, उनकी मुक्ति हो गई। ये भगवान जो बंधे हुए थे, कुबेर आत्मजौ बद्ध मुक्तयु ततस्त्वम, ये है ना, कुबेर आत्मतौ बद्ध उत्तयु एव दत्व त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च, भक्ति भाजौ कृतौ च, इन लोगों को भक्ति प्रदान भगवान किए, भक्त थे लेकिन भगवान भक्ति प्रदान किए, प्रेमा भक्ति प्रदान किए हैं, उन लोगों को मुक्त कर कर करके। जो भगवान स्वयं बंधे हैं वे भगवान बंधे को मुक्त करते हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव कार्य नहीं है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान को कौन बांध सकता है? यशोदा मैया दिन भर प्रयास की, कृष्ण को बांधने के लिए बांध नहीं पाई। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, जो भगवान सबको बांध कर रखे हैं वो भगवान आज बंध गए हैं, लेकिन बंध करके भी भगवान बंधन वाले को मुक्त कर सकते हैं। भगवान मुक्त कर दिए। और तो भगवान जब लेकर के आए उखल को और जब मुक्त हो गए वहां पर, तो ग्वाल बालों ने देखा कि कैसे वे लोग चतुर्भुज रूप में आए और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के प्रार्थनाओं में से उन लोगों ने एक प्रार्थना किया है जो कि अंतिम प्रार्थना है और बड़ा सुंदर प्रार्थना, यही थी प्रार्थना पर मैं प्रवचन किया था जू में, बाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्न संस्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतादर्शनेऽस्तु भवस्तनूनाम। तो ये उनकी प्रार्थना थी भगवान से, कहते हैं बाणी गुणा अनुकथने, हे भगवान हम लोगों की बाणी नित्य निरंतर आपके कथाओं का वर्णन करने में लगा रहे हैं। अनुकथने, अनुकथने शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग भगवान का जो कथा कह रहे हैं या भगवान का नाम ले रहे हैं तो अनुकथने, मत इसी बात पर कहूंगा कि वाणी की सार्थकता है भगवत गुणानुवाद कर करके। कैसा भगवत गुणानुवाद? अनुकथने, जो सुने हैं वह अपने मन से बना करके मत कहो, कथा वही कहो जो कि सुने हो। तो ज्ञान तीन प्रकार का होता है। एक ज्ञान कहलाता है एक्वायर नॉलेज, तीनों ज्ञान प्राप्त होता है सुन करके ही, कोई भी ज्ञान प्राप्त है सुन करके। तो एक है एक्वायर नॉलेज, कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया। आजकल इस्कान में बहुत भागवत कथाकार हो रहे हैं और सब जगह से सुन रहे हैं, जो सुनाने योग है उससे भी सुन रहे हैं और जो सुनाने योग नहीं उससे भी सुन रहे हैं, पात्र को पात्र से सुन रहे हैं। तो ये सब सुना हुआ जो ज्ञान है ये केवल ज्ञान रहता है, यह कहलाता है एक्वायर नॉलेज। उसके बाद होता है रियलाइज नॉलेज, वह नॉलेज जो हम सुने हैं उसको हम प्रैक्टिस में लाए। जैसे कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, हम सुने हैं कि चैंट एंड बी हैप्पी, भगवान का नाम जपो और खुश रहो, हम सुने हैं कह सकते हैं, असर पड़ेगा, लेकिन जितना आप पर असर है उतना ही असर उसे पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति जप कर रहा है और वह कहता है कि चैंट एंड बी हैप्पी, उसका कुछ ज्यादा ही असर पड़ेगा। ज्ञानम विज्ञानम सहितम, वो विज्ञान हो गया। तो एक्वायर नॉलेज, रियलाइज नॉलेज और तीसरा है रिवील्ड नॉलेज। रियलाइज नॉलेज से हृदय शुद्ध होता है, जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान आते हैं और उसके बाद जो व्यक्ति कहता है वह वर्ड प्यूरिफाइड वर्ड होता है कृष्ण के द्वारा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वह दिव्य ज्ञान होता है। श्री प्रभुपाद जी का ज्ञान दिव्य ज्ञान है। श्री प्रभुपाद जी का लेक्चर हुआ, श्री प्रभुपाद जी का ग्रंथ हुआ, ये सब दिव्य ज्ञान है। एक बार प्रभुपाद जी यहीं पर राधामोदर में लेक्चर दे रहे थे भक्ति स्वामी सिंधु पर, तो एक भक्त हैं वैकुंठनाथ प्रभु, तो प्रभुपाद जी कहे कि सब लोगों को भगवान के धाम जाना चाहिए, कि हम लोगों का काम यही है कि लोगों को भगवान के धाम भेजना, बैक होम बैक टू गॉड हेड। और भगवान के धाम जाने के लिए गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। तो पुराने जमाने में भक्तों में बड़ी लालसा थी और लालसा क्या थी कि लोगों को भगवान के धाम में भेजना, होल सोल काम, अपना अपना चिंता नहीं करते थे। प्रहलाद महाराज के सब फॉलोअर थे, अपना चिंता नहीं करते थे भक्त लोग, सबको भगवान के धाम भेजना है, जो भी रोड पर है सबको भगवान के धाम भेजना है, यही उनका मिशन था, सेंड एवरीवन बैक होम बैक टू गॉड है। तो ये वैकुंठनाथ प्रभु प्रभुपाद जी से पूछे कि प्रभुपाद जी आप तो आज लेक्चर में बताए कि भगवान के धाम जाने के लिए दीक्षा लेना जरूरी है, तो सब लोग दीक्षा कैसे ले सकते हैं, जब सब दीक्षा नहीं लेंगे तो सब भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी थोड़ा पीछे मुड़े और भक्त लोग थे, ब्रह्मानंद तमाल कृष्ण माला सब लोग थे, तो प्रभुपाद ने कहा कि यदि वे लोग मेरा ग्रंथ पढ़ेंगे, इफ दे रीड माय बुक दे ऑल आर इनिशिएटेड एंड दे विल गो बैक होम बैक टू गॉड हेड। यदि वे लोग मेरे पुस्तकों का अध्ययन करें तो ये भगवान के धाम जा सकते हैं, उन दीक्षा हो गई उनकी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी का पुस्तक वितरण बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है अपौरुषेय है, ये चार प्रकार के डिफेक्ट से परे है, यह रिवील्ड नॉलेज है। तो हम भी धाम जाएंगे भगवान के, उनका ग्रंथ पढ़ेंगे तो और वितरण करेंगे तो, और जो पढ़ेगा वो भी जाएगा। तो हम लोगों को वही गुणानुवाद करना चाहिए जो सेल्फ रियलाइज लोगों से हम सुने हैं। तो वही बात यहां पर कहते हैं, वाणी गुणानुकथने सौ कथायाम। जिह्वा की सार्थकता है कि भगवान का नाम लेने से और भगवत कथा का गुणानुवाद करने से, और श्रवण इंद्रियां जो कान है वो सदैव हे प्रभु आपका कथा सुनता रहे, हस्तौ च कर्मसु और हाथ लगा रहे 24 आवर डे, कम से कम 8 घंटा तो लगा रहे सेवा करने में, और मनः तव पादयोर नह, नह मतलब हम लोग, यहां पर वो तो दो ही हैं लेकिन नह बहुवचन में कहते हैं, तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सब लोगों के लिए। तो सब लोगों के जीवन की साक्षात्ता यही है कि जिह्वा भगवान के नाम में लगा रहे, कान भगवत कथा सुनने में, हाथ इत्यादि जो इंद्रियां हैं भगवान की सेवा करने में, मन भगवान का चिंतन करने में, सिर भगवान का प्रणाम करने में, दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवस्तनु नाम। हे भगवान, जो संत लोग हैं, जो आपसे अभिन्न हैं, भवतम तनु नाम, आपसे आपके श्री अंग हैं जो साधु लोग संत लोग, उन लोगों के दर्शन में हमारा दृष्टि लगा रहे। दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण, तो इस प्रकार से ये गुणानुवाद किए भगवान का, और ये नल और कुबर को मुक्ति प्राप्त हुई। श्रीपाद जी गोस्वामी गोपाल चंपू में वर्णन किए हैं कि ये नल और कुबर वही हैं जो गोपाल चंपू की जो कथा है उसमें एक स्तिग्न कंठ है और एक मधुकंठ है। ये नल और कुबर ही थे जो बाद में स्किद कंठ हुए और मधुकंठ हुए, और आज भी गोलोक वृंदावन में भगवान के लीला कथाओं का गुणानुवाद करते हैं, उनकी यही इच्छा थी। तो इस प्रकार से जो त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च, भक्ति भाजौ कृतौ च, आपने उन्हें प्रेमा भक्ति प्रदान किया, वह भक्ति जिससे आपका वे गुणानुवाद कर सके, आज भी कर रहे हैं। तथा प्रेम भक्ति स्वकामी प्रेक्ष अप्रेम प्रेमा भक्ति, हे प्रभु आप मुझे भी वैसा प्रेम भक्ति दें। तो इस प्रकार से वे लोग प्रार्थना किए। ये शाम का समय हो गया था, रात का समय, उस समय तो को टॉर्च लाइट नहीं था, ना तो बिजली था। तो घर से जितने ब्रजवा, देखिए भगवान जितना भी लीला किए हैं, जब वो सब लोग जाने हैं बाद में, पुतना मर गई उसके बाद लोग दौड़ करके आए, जब आवाज आया तब, वैसे जब वृक्ष गिर पड़ा सब लोग बेहोश हो गए, उतने में सब बहुत लीला हो गया, केवल ग्वाल बाल लोग देख पा रहे थे जो वहां पर थे, और सब लोग बेहोश हो गए थे। जब मूर्छा टूटा तो सब लोग भाग करके आए जहां से आवाज आई थी, और अपने हाथ में दीप लेकर के आए। हम लोग डेली दीपक दिखाते हैं ना दामोदर को, इसका पता है मतलब क्या होता है? जैसे रथ यात्रा में हम लोग रथ खींचते हैं तो उसका मतलब क्या है, भाव क्या होना चाहिए? राधा रानी का भाव है, राधा रानी जो कुरुक्षेत्र से कृष्ण को खींच कर ला रही है चलो वृंदावन। तो वैसे जब दीप दिखा रहे हैं तो ब्रजवासी का भाव होना चाहिए, और क्या देखना है? वो ब्रजवासी क्या देख रहे थे? पूजा थोड़े कर रहे थे कृष्ण का, आरती थोड़े कर रहे थे, क्या कर रहे थे बताओ माता जी लोग? माँ क्या करेगी जब बच्चा गिर गया तो क्या करेगी? देखिएगी हाथ पैर टूटा नहीं है ना, सब ठीक है ना, चोट तो कहीं नहीं लगा है ना, तो दीप से वही देखना है कहीं खून तो नहीं गिर रहा है ना, हाथ पैर टूटा तो नहीं है ना, सब ठीक तो है ना, पेड़ गिरा हुआ है, पेड़ में दबा तो नहीं है ना। तो भाव यह होना चाहिए ना कि आरती करना शुरू करो, निहारो। तो इस प्रकार से भगवान दामोदर हम सब लोगों को हम सब लोगों को प्रेमा भक्ति दें, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा, और वह काम क्या है कि वाणी गुणा अनुकथने श्रवण कथायाम, जितना हो सके जिह्वा का सदुपयोग करें भगवान का गुणानुवाद करने पर, नहीं तो यदि भगवान का गुणानुवाद नहीं करेंगे तो इस जिह्वा का आ गया दादुरी के समान, ये जिह्वा मेढक के जिह्वे के समान है जो ट्र 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 कर करके सांप को बुलाता है, हम भी माया को बुलाएंगे। तो इसलिए वाणी का सदुपयोग करें, इसलिए कार्तिक महीने में भगवान का नाम लेने में, कान का सदुपयोग करें भगवान का कथा सुनने में, अपने समस्त अंगों का प्रयोग करें भगवान का सेवा करने में, वैष्णव सेवा करने में, साधुओं का दर्शन करने में, मन भगवान का स्मरण करने में, भगवान को प्रणाम करने में, इस प्रकार से कृष्ण की प्रेम भक्ति हम भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अधिक समय हो गया है, 9 बज गया। धन्यवाद। हरे कृष्ण।